भागवतम एकादश कंस अध्याय छह यदुवंश का प्रभात गमन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं एवं महान प्रजापतियों को साथ लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता शिवजी भी अनेक भूत प्रेतों से घिरकर द्वारका गए। कृष्ण का दर्शन करने की आशा से शक्तिशाली इंद्र अपने साथ मरुतों, आदित्यों, वसुओं, अश्विनियों, ऋभुओं, अंगिराओं, रुद्रों, विश्वे देवों, साध्यों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुहेयकों, महान ऋषियों, पितरों तथा विद्याधरों एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी पहुंचे। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्यों को मोह लिया और समस्त जगतों में अपनी महिमा फैला दी। भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कलमश को नष्ट करने वाला है। समस्त प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस द्वारका की सुशोभित नगरी में देवताओं ने श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को अतृप्त नेत्रों से देखा। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी को स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान की मोहक शब्दों तथा भावमय वचनों से प्रशंसा की। देवता कहने लगे, हे प्रभु, बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का ध्यान अतीव भक्ति पूर्वक करते हैं। हम देवतागण अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन तथा वाणी आपको समर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नत होते हैं। हे अजित प्रभु, आप तीन गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत्य व्यक्त जगत के सृजन, पालन तथा संहार में लगाते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं। अतएव आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वे केवल सामान्य पूजा, वेदा अध्ययन, दान, तप तथा अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे स्वामी, जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि अपने उन हृदयों के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं जो आपके प्रेम में द्रवित हैं। इसी तरह आपके आत्म संयमी भक्त गण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूजा प्रातः दोपहर तथा संध्या समय करते हैं। इस तरह वे आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषयक समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती है। जो लोग ऋग यजुह तथा साम वेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं और जो पूर्ण महाभागवत हैं, वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह से पूजा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, आप अपने सेवकों के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उस मुरझाई हुई बासी फूल माला को स्वीकार कर लिया है जिसे हमने आपके वक्ष स्थल पर चढ़ाया था। क्योंकि लक्ष्मी देवी आपके दिव्य वक्ष स्थल पर वास करती है, इसलिए निसंदेह वे हमारी बेटों को उसी स्थान पर अर्पित करते देखकर उसी तरह ईर्ष्या करेंगी जिस तरह एक सौत करती है। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपनी नित्य संगनी लक्ष्मी देवी की परवाह न करते हुए हमारी बेट को सर्वोत्तम पूजा मानकर ग्रहण करते हैं। हे दयालु प्रभु, आपके चरण कमल हमारे हृदयों की अशुभ कामनाओं को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का कार्य करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया और पवित्र गंगा को तीन शाखाओं में तीनों लोकों में से होकर विजय ध्वजा की भांति बहने दिया। आपने अपने चरण कमलों के तीन बलशाली पगों से बलि महाराज को उनके विश्वव्यापी साम्राज्य सहित वश में कर लिया। आपके चरण असुरों में भय उत्पन्न करते हैं जिससे वे नरक में भाग जाते हैं और आपके भक्तों में निर्भीकता उत्पन्न करके उन्हें स्वर्ग जीवन की सिद्धि प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी निष्ठापूर्वक पूजा करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके चरण कमल कृपा करके हमारे सभी पाप कर्मों से हमें मुक्त करें। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, दिव्य आत्मा हैं, जो भौतिक प्रकृति तथा इसके भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ हैं। आपके चरण कमल हमें दिव्य आनंद प्रदान करें। ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े देवता देहधारी जीव हैं। आपके काल के वश में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते वे सब उन बैलों जैसे हैं जिन्हें छिदे हुए उनकी नाक में पड़ी रस्सी नस के द्वारा खींचा जाता है। आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के कारण है। आप प्रकृति की स्थूल तथा सूक्ष्म दशाओं को नियमित करने वाले तथा हर जीव को अपने वश में करने वाले हैं। काल रूपी चक्र की तीन नाभियों के रूप में आप अपने गंभीर कार्यों द्वारा सारी वस्तुओं का हास करने वाले हैं और इस तरह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हे प्रभु, आदि पुरुष अवतार महाविष्णु अपनी सर्जक शक्ति आपसे ही प्राप्त करते हैं। इस तरह अच्युत शक्ति से युक्त वे प्रकृति में वीर्य स्थापित करके महत्तत्व उत्पन्न करते हैं। तब भगवान की शक्ति से समन्वित यह महत्तत्व अपने में से ब्रह्मांड का आदि सुनहला अंडा उत्पन्न करता है, जो भौतिक तत्वों के कई आवरणों परतों से ढका होता है। हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के परम सत्रष्टा हैं और समस्त चर तथा अचर जीवों के परम नियंता हैं। आप ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रिय विषयक कार्यों के परम नियंता हैं और आप कभी भी इस भौतिक दृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय विषय कार्यों के अधीक्षण के समय संदूषित या लिप्त नहीं होते। दूसरी और अन्य जीव, यहाँ तक कि योगी तथा दार्शनिक भी उन भौतिक वस्तुओं का स्मरण करके विचलित तथा भयभीत रहते हैं, केवल उन भौतिक पदार्थों को याद करके जिनका परित्याग प्रकाश की खोज करते समय उन्होंने त्याग दिया था। हे प्रभु, आप 16,000 अत्यंत सुंदर राजसी पत्नियों के साथ रह रहे हैं। अपनी अत्यंत लजीली तथा मुस्कान भरी चितवन तथा सुंदर धनुष रूपी बोहों से वे आपको अपने उत्सुक प्रणय का संदेश भेजती हैं, किंतु वे आपके मन तथा इंद्रियों को विचलित करने में पूरी तरह असमर्थ रहती हैं। आपके विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियां तथा आपके चरण कमलों के धोने से उत्पन्न पवित्र नदियां तीनों लोकों के सारे कलमश को विनष्ट करने में समर्थ हैं। जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं और आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों से उनमें स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह ब्रह्मा जी शिव तथा अन्य देवताओं समेत भगवान गोविंद की स्तुति करने के बाद स्वयं आकाश में स्थित हो गए और उन्होंने भगवान को इस प्रकार से संबोधित किया। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व हमने आपसे पृथ्वी का भार हटाने की प्रार्थना की थी। हे अनंत भगवान, हमारी वह प्रार्थना पूरी हुई है। हे प्रभु, आपने उन पवित्र लोगों के बीच धर्म की पुनर्स्थापना की है जो सत्य से सदैव दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। आपने अपनी कीर्ति का भी सारे विश्व में वितरण किया है। इस तरह सारा संसार आपके विषय में श्रवण करके शुद्ध किया जा सकता है। आपने यदुवंश में अवतार लेकर अपना अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट किया है। और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु आपने उदार दिव्य कृत्य किए हैं। हे प्रभु, कलयुग में पवित्र तथा संत पुरुष जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांग जाएंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आप यदुकुल में अवतरित हुए हैं और अपने भक्तों के साथ आपने 125 शरद ऋतुएं बिताई हैं। हे प्रभु, इस समय देवताओं की ओर से आपको करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहा। आपने पहले ही अपने वंश को ब्राह्मण के शाप से उभार लिया है। हे प्रभु, आप सारी वस्तुओं के आधार हैं और यदि आप चाहें तो अब वैकुंठ में अपने धाम को लौट जाएं। साथ ही हमारी विनती है कि आप सदैव हमारी रक्षा करते रहें। हम आपके विनीत दास हैं और आपकी ओर से हम ब्रह्मांड का कार्यभार संभाले हुए हैं। हमें अपने लोगों तथा अनुयायियों समेत आपके सतत संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, हे देवताओं के अधीश ब्रह्मा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं तथा अनुरोध को समझता हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैं वह सारा कार्य संपन्न कर चुका जिस कार्य की तुम लोगों को अपेक्षा थी। वही यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ, ऐश्वर्य में विशेष रूप से अपने शारीरिक बल तथा साहस में इस हद तक बढ़ गया कि वे सारे जगत को ही निगल जाना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है। यदि मुझे यदुवंश के इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले सदस्यों को हटाए बिना यह संसार त्यागना पड़ा तो इनके असीम विस्तार के उफान से सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब यह विनाश पूरा हो चुकेगा और मैं वैकुंठ जा रहा होऊंगा, तो मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे वास स्थान पर अवश्य आऊंगा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ऐसा कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से गिरे हुए ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका में भयंकर उत्पात हो रहे हैं, अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है, ऐसे शाप का परिहार असंभव है, इसीलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहे हैं। हे आदरणीय वरेषु जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं तो अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थल प्रभास चलें, हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्षमा से पीड़ित था, किंतु प्रभात क्षेत्र में स्नान करने मात्र से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त की। प्रभात क्षेत्र में स्नान करके वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने तथा उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त दान देने से हम निश्चय ही इन भीषण संकटों को पार कर सकेंगे। जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे गुरु नंदन, इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादवों ने उस प्रभात क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने अपने रथों में घोड़े जोत दिए। हे राजन, उद्धव भगवान कृष्ण के सदा से ही श्रद्धावान अनुयायी थे। यादवों के कूच को अत्यंत निकट देखकर, उनसे भगवान के आदेशों को सुनकर तथा भयावने अपशकुनों को ध्यान में रखते हुए वे एकांत स्थान में भगवान के पास गए। उन्होंने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के परम ईश्वर, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती है। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतया समर्थ हैं, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका तिरोधान सा निकट है। हे स्वामी भगवान कृष्ण, मैं आदेशन के लिए भी आपके चरण कमलों का विक्षोह सहन नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम लेते चले। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अतीव शुभ हैं और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। हम सभी आपके भक्त हैं, तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं या आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं। हम लेटते बैठते, चलते खड़े होते, नहाते खेलते खाते या अन्य कुछ करते आपकी ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषि गण, ऊर्ध्व रेता, शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म कहलाता है। हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त सुमाधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्काते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममयी लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की ही तरह मोहित करने वाली हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गुह्य रूप में उत्तर देने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत यदुवंश का प्रभात गमन नामक 6वें अध्याय के श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।